अब होता क्या, अल्लाह के रास्ते में फकीर घटिया बेकार चीजें दे तो देने चाहो कि नहीं नहीं भाई आज सबक में सुन लिया, अब आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे, तो फौरन वो जो इबलीसो है ना वो दिमाग में आके कुछ बातें डालता है। वो अगले हिस्से में बताई जा रही है कि जब कभी कोई चाहता भी अल्लाह के रास्ते में देना तो शैतान आके क्या करता है, अश्शैतानु याइदुकुमुल फकरा, शैतान तुम्हें डराता है फकर से, गरीब हो जाओगे। वह यामुरुकुम बिल फख्शाई, और बेहयाई का हुक्म देता है, जबकि वल्लाहु याइदुकुम मग़फिरतम मिन्हु, और अल्लाह तो तुम्हें अपने पास से बख्शिश का वादा देता है, वह फदलन और फजल का भी। यहां आप देखिएगा कि शैतान हमें अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की नियत करते ही देखता है ना जब, तो वो हरकत में आ जाता है, हाय हाय तुम गरीब हो जाओगे। यानी कभी दिल भी चाहे ना कि हम कुछ देना चाहते हैं तो शैतान आके कहेगा मत दो, फकीर हो जाओगे, देखो भी इतना तो खर्चा है ना, देखो भी बच्चों की शादियां भी तो करनी है ना, अब तुम सारा उठा के दे दोगे गरीबों को और मस्जिदों को मदरसों को, तुम्हारा क्या बनेगा। अब क्या हुआ, फकीरी का वादा दिया, ना ना भी ना देना, नहीं अभी सोच, फिर पाकिस्तान भी तो जाना है ना इस साल, फिर वहां भी तो खर्चा होगा ना, और फिर जाके भी तो वहां ये होगा, और फिर जब वापस आना है तो बहुत कुछ होगा, दिस एंड दैट। करते कराते शैतान हमारा हाथ रोकता है, जब हाथ रोकता है तो पैसा जमा हो गया, ऐसे ही हुआ ना। अब जब पैसा जमा हुआ तो अगला हमला क्या है, या मरुगम बिल फख्श, उठो ना चलो ना जरा सा थोड़ा सा वो खर्च करो, देखो बच्चे की शादी, अब हल्का सा तो फंक्शन करो ना, उठो ना कोई मेहंदी कोई उबटन, फिर कमाते किस लिए। पहले अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से रोकता है, और जब जमा हो जाता है पैसा तब तो उस पैसे को अपनी खुशियों के नाम पे, फन के नाम पे, कॉन्सर्ट्स और फुला फिर कहता जाके खर्च करो, देखो फिर क्या हाल है, क्यों नहीं करना ये नहीं वो नहीं। सच बताइए क्या आज अक्सरियत का ये हाल नहीं है। शैतान बुलंद मकासिद से हटाकर छोटे छोटे कामों पे खर्च करवाता है, फहाशी और यानी, क्या आज हमारा यही हाल नहीं है कि दीन के लिए देते हुए डरते हैं, सबसे छोटा नोट और फटा हुआ नोट, और नोट तो बड़ी बात है, हम तो क्वाइंस पे चलाते हैं दीन वालों को, पकड़ के डाल दो परस का बोझ उधर कॉइन्स में, ठीक है अल्लाह ताला ने किसी को दिया एक एक पैनी भी बहुत बड़ी है, यहाँ कोई तकाबुल मुराद नहीं है, लेकिन दिल का मामला है। अल्लाह के रास्ते में 10 दफा सोचेंगे, और लिबास कपड़े जूते परस शादी मंगनी ओपटन कभी सोचते हैं, तालीमात के नाम पे, दुनियावी तालीम के नाम पे। मैं हैरान होती हूँ पाकिस्तान में रहने वाली कोई फैमिली जब अपने किसी बच्चे को बाहर के मुल्कों में पढ़ाती है, किसी ने मुझे बताया कि 3 लाख रुपए इसकी एक सेमेस्टर की फीस हम यहाँ से भेजते हैं, 3 लाख, और मैंने नहीं बहुत ज्यादा लोगों को देखा कि बाहर से डिग्रियां लेके जाए तो पाकिस्तान में जाके फिर बेचारे वो ही पढ़े, बाप दादा जद्दी पुश्ती अमीर है वो फिर कारोबारों में उनको लगा लेते हैं, मेरे अपने घरों की ये बातें, कितना बच्चों के पढ़ने पर लगाते हैं, लेकिन आपको होता है कि जो बिरादरी खास है नाम नहीं लेती उनमें जॉब नहीं है, हमारे खानदानों में जॉब बहुत थोड़ी है, सब कारोबारी हैं, तो पकड़ के बेटों को फिर जाके बाप दादा की कुर्सी पे बिठाते हैं, और 3 लाख आप लगाइए कितने बने, और फिर उनका रहना, उनके फ्लैट, उनका खाना पीना, टिकटें, सफर खर्च, पानी की तरह। वो एक माँ थी, वो उनका बेटा कहीं बाहर गया हुआ पढ़ने, 5 साल में कैन यू बिलीव करोड़ों रुपया कहती हैं लगा है उसके ऊपर इन 5 सालों में, करोड़ों रुपया, और वो दिए खुशी से, अब अल्लाह उसको जिंदगी दे वो उससे कुछ खर्च करवा ले, और जो बच्चे बाहर आते हैं फिर वो उसकी कदर भी तो पहचाने कि घर वाले किन मेहनतों से मुशक्कतों से बच्चों पे लगाते हैं, लेकिन लगाते हैं खूब लगाते हैं, हमारे कल्चर में आम है, बच्चा यूनिवर्सिटी जा रहा है कॉलेज जा रहा है 100 50 कोई बड़ी बात ही नहीं उसको पकड़ाना, लेकिन जहां हम नहीं लगाते वो कहां नहीं लगाते, अल्लाह के रास्ते में। एक सिंगर की टिकट हजारों की, कैन यू बिलीव, 5 5 हजार करोन, पिछले साल तो एक कॉन्सर्ट हुआ था नॉर्वे में, कोई बाहर से आया था वो लड़का, तो ऐसे ही दिलचस्पी लेते हुए मैंने पूछा टिकट के, 5 हजार करोन टिकट। अमेरिका की एक बात है, एक डिनर होता है हर साल, यानी इस तरह ये जो बड़े इवेंट्स होते हैं ना, फिर इसमें रात को एक फैमिली डिनर होता है, शायद वहां मेरा ख्याल है $250 300 एक बंदे की थी, तो किसी को मैं जानती थी वो बच्चों के साथ गए हुए थे, कहती जी $1800 दे के इस हॉल में आके बैठे हैं, आप बताइए इंसान कहाँ लगा रहा है, फिर वहां जाके फिर वहां मिक्स गैदरिंग, तो लो सेग्रीगेशन। इतने बड़े होटल में फिर एक ग्राउंड टेबल है, और उसमें भी जब तक एक बेगम, एक साहब और दो चार हंसते बोलते अदाएं दिखाते ना दिखाएं, वो स्टैंडर्ड ही नहीं है। वो कहते नहीं, हमारे होटल में ये नहीं हो सकता कि आपको बीच में पार्टीशन लगा दें, हमारा तो लुक ही खराब हो जाएगा। कहाँ कहाँ जाके नहीं हमने देखा कि कहाँ हम गए। और आज वल्लाह ही लोग खुश हो रहे हैं, एक शादी हॉल पे खर्च करते हैं आप। किसी की शादी की बात थी, मैंने ऐसे ही पूछा बाय द वे, मैंने कहा किस हॉल में, होटल में? कह रही नहीं, अब पाकिस्तान में हॉलों में नहीं होती, अब ओपन में होती हैं, पूरा शहर सजता है वहाँ, खुले मैदानों में, ग्राउंड्स में, पूरी कनोपीज के साथ। और मैंने पिछले 2 साल पहले शायद एक शादी अटेंड की, यकीन करें घर से सोच रही थी क्या होगा माहौल, दिल में आता ना खुला मैदान है, टेंट ही लगे होंगे जो हमने कभी देखे हुए। बिलीव मी कि आपने जो ही उस कनोपी के अंदर जाके कदम रखा, आपको लगा आप किसी शाही हॉल में आ गए। बड़े बड़े सोफे, पहले जमाने में कुर्सियां होती थी, तो अब सोफे और मैचिंग, और सुभान अल्लाह नीचे कारपेट्स शादी के नाम पे। मेरी तो नजर घूम गई, मुझे तो तर्स आता है उन पे कि वो बेचारे जो ला ला के रखते होंगे, लेकिन जो लोग करवाते हैं फिर करने वाले, उनका रिस्क भी लग गया। इतना माल खर्च करते हैं, लेकिन जहां बात होती है वल्लाहु यईदुकुम मग़फिरतम मिन्हु व फ़ज़ला, अल्लाह तो तुम्हें मग़फिरत की बातें करता है, अल्लाह तो तुम्हारी गुनाहों वाली जिंदगी छुड़ाकर तुम्हें तौबा करवाना चाहता है। और अपना फजल जो देगा, जो दिल की खुशी देगा, उसके लिए क्या करते हो, उसके लिए तुम्हारी जिंदगी में क्या प्लान है? कोई बड़ी बात नहीं कि इतने पौश माहौल में शादी खाकर आप वहां से खुश आए, इज इट ट्रू? आप इतने पौश माहौल से आने वाले सबको क्या सोचेंगे, वो खुश जाते हैं, वो डिप्रेस जाते हैं? खुश वो होंगे जिन्होंने लगाया है कि शुक्र अल्लाह ने हमें दिया, हमने अपने बच्चे बच्ची की शादी पे लगाया। चले वैसे ही वो दूर के रिश्तेदारों को तो फिर बुलाते ही नहीं है, क्या अब इनको क्या बुलाएं, विद फैमिली बुलाएं? वो जिनका इन जगहों पे आना मुश्किल होता है, वो उनको खुद ही नहीं बुलाते, चाहे वो करीबी खाला मामू के बच्चे क्यों ना हो। कहते हैं लो अब इनको क्या तंग करें, रात 2 बजे ये बसों में धक्के खाते हुए आएंगे, इधर नहीं जाने देते। वो तो शुक्र है बुलाते ही नहीं, लेकिन जिनको मुंह मारे बुलाना पड़ता है, वो आहें भरते हुए उठते हैं, और हर एक शादी से उठते हुए दूसरी शादी का रेट बढ़ चुका होता है। हर एक शादी में जो बहू का डिस्प्ले होता है ना, अगले आने वाले बेटे की जो बहू आनी है, उसका माँ बाप के दिमागों पे एक बोझ डाल के भेजते हैं कि अब तुम भी तो ये करोगे। यकीन करें कि एक शादी में दो धुलने हैं, और मेरे इल्म में ये बात है कि वहां दो स्टेज लगते हैं आप। वाय कहती, वो उनका मैचिंग, ये इनका मैचिंग, और एक के मैचिंग से दूसरे गलती से बैठ गए, इस पर झगड़ा शुरू हो गया, बाद में वो घर ही टूट गया कि जी ये हमें इधर से क्यों बुलाया, गलती से एक दुल्हन वालों के उधर बैठ गए, उसके उधर, उन्होंने रिक्वेस्ट कर दी कि आप उधर आ जाए, ये इधर आ जाए, इस पे वो रूठ के मुंह ही नहीं सीधा किया कि आपने मेरी बेइज्जती कर दी है। जरूरत क्या थी इतनी छलांगी लगाने की? याद रखिए, जहां भी अपने नाम पे और अपनी इज्जत पे करेंगे ना, अल्लाह तआला कहते हैं फइन्नल इज्जत लिल्लाहि जमीअ, इज्जत सारी अल्लाह की है। शैतान तो तुम्हें सिर्फ धोखे देता है, और वो माल अगर तुम किसी ऐसी चीज पे लगाओ कि जहां अल्लाह ने तुम्हारे लिए खैर रखी है। सूरत आल इमरान आयत 92 में हम पढ़ेंगे, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुन्फिकु मिम्मा तुहिब्बून, तुम नेकी की असल को, रूह को पा ही नहीं सकते जब तक अपनी मनपसंद चीज अल्लाह के रास्ते में ना दे दो। मोहब्बत दे मिलेगी अल्लाह के नाम पे लगाकर, माल जमा करोगे, फलां गाड़ी, फलां मॉडल, उतना घर, उसकी गाड़ी, उसकी घड़ी, दे उसी कॉन्शियसनेस में तुम्हारा वक्त गुजर जाएगा, और ही दुखी होगे। लेकिन आज हम मुसलमान ये सब भूल गए। अल्लाह के नबी जिनकी वफात के वक्त आपके चिराग में जो तेल था ना, वो उधार का था, नबी सल्लम की जिरा रहन में रखी, रहन समझते हैं, मॉर्गेज कह ले, या रखवा के, और थोड़ा सा तेल हजरत आयशा कहती है लेकर आए थे कि जो आपकी नजा की घड़ियों में जल रहा था, जिस नबी की मैं और आप उम्मत है। आज हम दौलत का पंप एंड शो दे के रिश्ते करते हैं और लेते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं यू तिल हिकमत में यशा, वो जिसको चाहता है हिकमत देता है, वह मैं यू तिल हिकमत फकदूत या खैरन कसीरा, और जो हिकमत दिया गया वो खैर कसीर दिया गया, लेकिन वमा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब, और नसीहत नहीं पकड़ते मगर अकली वाले। यहाँ अब हिकमत की बात आ गई है। देखिए हिकमत की थोड़ी वजाहत पीछे की थी, वो तो लफ्जी वजाहत थी ना, इसके बहुत सारे एंगल हैं, लेकिन आयतों के साथ अगर सिर्फ रहें तो यहाँ हिकमत से मुराद क्या है कि माल कहाँ लगाऊं। अल्लाह के रास्ते में लगाना इतना बड़ा सिनेरियो है कि समझ ही नहीं आती कहाँ लगाएं कहाँ ना लगाएं, किसको दें किसको ना दें, कौन डिजर्विंग है कौन डिजर्विंग नहीं है, किसको देने से कितना मिलेगा पता नहीं, ये गरीब ऐसे ही प्रोफेशनल तो नहीं है हर वक्त ही लेते रहे, ये बेगर्स तो नहीं है, और ये दीन वाले इनके कहीं अपने ही घर तो नहीं भर रहे जो दीन के नाम पे हर वक्त ये हमें चंदे और इसकी दावतें देते। 100 किस्म की बातें होती है ना। तो आइए यहाँ समझ लीजिए कि यहाँ हिकमत से मुराद क्या है कि कहाँ किस वक्त कितना लगाना है। देखिए मैं आपको इसको एक छोटी सी मिसाल से समझाने की कोशिश करूंगी अगर मैं कर सकी अपना काम। एक कारोबारी होता है, बिजनेसमैन होंगे आपके भी घरों में, आपको होता है कि बिजनेस किस चीज़ का नाम है, एक लफ्ज़ में अगर कोई मुझे बिजनेस की तारीफ बताए ना तो मैं इंशाल्लाह ताला आपकी बात दोहरा दूंगी।
बिजी रहना,
मसरूफ रहना जी, माल की वापसी का सिर्फ एक लफ्ज़ है, सिर्फ एक लफ्ज़ में पूरी बिजनेस की टर्म को आप डिफाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन वाले भी लिखे। माल से माल, तिजारत, नफा, सब बातें अपनी जगह, बिजनेस नाम है फैसले का, किस वक्त राइट डिसीजन। 1 मिनट होता है फ्लक्चुएशन की तरह, ओके कह देंगे तो डील आपकी और आपकी जगह दूसरा ले गया, सब नफा खा जाएगा। अच्छा बिजनेसमैन कौन होता है? राइट वक्त पे राइट डिसीजन, इस कस्टमर को दे दूं कि ना दूं, ये सौदा ले लूं कि ना ले लूं। आपने कभी शेयर्स बढ़ते हुए देखे होंगे, खबरों में आते थे कभी, तिजारती खबरें जब पाकिस्तान में हम कभी सुनते थे, एक ही लो काल पड़ी होती है, उसने लिया उसने छोड़ा, उसने दिया उसने लिया, दिस दिस, और 2 मिनट में ये जो बिडिंग कहते हैं, बिडिंग की बात करती हूँ तो मुझे एक एक्सपीरियंस याद आ जाता है, नाम लेने को एडवर्टाइजिंग तो नहीं, लेकिन जैसे ईबे अमेजोन आप लोगों ने नाम सुने होंगे, आपको पता है इस वक्त कितना बड़ा बिजनेस बन चुका है, लास्ट मोमेंट बिडिंग। इसका एक एक्सपीरियंस किया, कोई चीज ले रहे थे दे रहे थे तो उसमें ये था टाइम आउट होता है, इतने मिनट रह गए अब इतने रह गए इतने रह गए, कोई चीज थी मुझे याद नहीं क्या थी कहानी, कोई कंप्यूटर की ऑफकोर्स, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसी चीजें अक्सर लेते हैं हम लोग, तो चीज काम की थी, तो उसमें मिसाल दे देती हूँ कि वो चीज 10 पाउंड की दिख रही थी और उसके टाइम में 5-6 मिनट रह गए हुए थे, तो मेरे हस्बैंड चूंकि इस चीज से लेते देते ना, इनको लोगों की मेंटेलिटी पता है, वो चीज जो पिछले 8 दिन से लगी हुई है और अभी सिर्फ 5 पाउंड पे रुकी हुई है, आपको पता है कि फिर 2 मिनट 1 मिनट फ्यू सेकंड रहे तो वो 5 वाली जंप करके 15 पाउंड पे पहुंच जाती है। जो बिडर्स होते हैं ना वो वेट कर रहे होते हैं घड़ी का, क्योंकि पहले दूंगा तो रेट बढ़ जाएगा, और एक दे रहा है फिर आखिरी 1 मिनट में यूं चलता है टिक 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 टिक, एक दे रहा है दूसरा दे रहा है, और जिसका आखिरी बिड हो गया उसको वो चीज मिल गई, अगर वो मार्केट से सस्ता, एक बिग जॉब है। अब इस बात से वापिस आए, एक कारोबारी शख्स ये देखता है कि कहाँ इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे ज्यादा मिलेगा, बस एक अल्लाह के रास्ते में देने वाला भी ऐसा बिडर होता है, हाई अचीवर्स। एक चीज है मैं कहां दूं कि मुझे फायदा होगा, मिसाल दे देती हूँ आपको, आपके पास कोई अपना जेवर है, खुद पहनूं, बैंक में रख दूं, बेटी को शादी में दे दूं, बहू को दे दूं, और क्या फॉर्म्स होती हैं, कोई इसको एक्सप्लेन करे थोड़ा सा, अल्लाह के रास्ते में दे दूं। चले ये 5 टर्म्स हैं, खुद पहनूं बहुत अच्छी बात है अगर है तो पहने, बैंकों को ना दे, जुल्म की हद है कि पिछले 10 साल से आपने अपना जेवर टच भी नहीं किया, सिर्फ इस आस पे के बच्चों के काम आएगा, आपको पता नहीं कि आप कितना बड़ा लॉस करें, आप उस पैसे को अगर बच्चों के नाम पे रखा हुआ है ना जेवर आपने, वल्लाह ही आप उस सारे पैसे को बेच के किसी काम पे लगाया होता तो 10 गुना बढ़ चुका होता वही सोने का सेट, जो आपका अभी सिर्फ 2 गुना बढ़ा है पिछले 10 साल में, जुल्म है जो हमारा जेवर इतना इतना लाख रुपए, और बैंकों में जेवर तो पड़ा हुआ है, जो पैसा है वो हमारा तो इस्तेमाल करते हैं, बेटी को दे दिया, बेटियां पहने ना पहने उनकी खुशी, कहाँ पहनती हैं बेटियां, चलो पहन ली खुशी की बात है, अच्छी बात है, खुश होगी, माँ ने दिया बहू को दिया, फायदा तो इन सब में भी है, आप भी पहने, कहीं रख लिया वक्त पड़ा तो बेच भी लिया, नो प्रॉब्लम, बेटी बहू को भी दिया, पांचवा है अल्लाह के रास्ते में। अब आपके पास 5 डील्स है ना, आप सच बताएं कि वह मैतल हिकमत फ़कदूत या खैरन कसीरा, या हिकमत को खैरे कसीर का, खैरे कसीर कहाँ से मिलेगी? बेटी को जो दिया, खुदा ना खास्ता साल बाद उसको जरूरत पड़ी उसने बेच दिया, फायदा तो हुआ, लेकिन क्या वो खैरे कसीर हुई? बाज बच्चियों का शादी के फौरन बाद चोरी हो जाता है, ये भी सुना मैंने, पूरा जेवर ही चोरी हो गया, अब क्या करें? बहू को दिया, हो सकता है कि वो उससे कोई फायदा ले ले छोटा मोटा। आपका दिया हुआ खैरे कसीर का बनता है जब वो खैर के कामों में लगता है। आपने वो जो पैसा दिया उसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, पता नहीं उससे क्या हैरत हो गई। अगली आयतें भी पढ़नी है, आगे भी यहाँ रुकना है आपको, इसलिए यहाँ छोटा सा एक डिस्कशन करते हैं। और वो क्या है कि खैरे कसीर कब बनता है माल, जब खैर को आम करने में लगता है। हिकमत का तकाजा है कि बंदा ऐसी जगह पे लगाए जिससे बहू बेटी आपके अपनी जात के अंदर ऐसा पुरसकून माहौल बने कि जहां ना चोरियां हों, कि जेवर चोरी होने का डर है, और ना इस तरह की कहानियां हों। हिकमत कहते हैं किसी भी चीज का ठीक वक्त पर ठीक डिसीजन। आप खाना पकाते हैं ना, मिसाल देती हूँ कि हम सब सिस्टर्स खाना तो बनाती हैं ना, आपने 10 लोगों के हाथ की हलीम खाई हो, 10 टेस्ट होते हैं, बिल्कुल होते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, किस वक्त पे क्या करना है। हिकमत का ताल्लुक बातों से भी है, कब बोलना है, कितना बोलना है, किस टोन में बोलना है, कब नहीं बोलना, कब चुप रहना है, ये हिकमत है। काम कब करना है, आप कह लें कि जिंदगी के हर मामले में चीज को उसकी मुनासिब जगह पे रखने का नाम हिकमत है। आप आज सर्दी थी, मोटे कपड़े पहन के आ गए, वेरी गुड, हिकमत का तकाजा था कि आप मोटे कपड़े पहने। आप सर्दियों में पतले कपड़े पहन के आए, ये आप हिकमत के खिलाफ है। आपकी उम्र का तकाजा है कि ज्यादा हैवी खाने ना खाएं, हिकमत का तकाजा है कि आप फ्राई खाने और इस तरह की चीजें ना खाएं। समझ गए ना? तो हिकमत इज अ जनरल टर्म, जिंदगी में अपनी चीजों को सही जगह पे रखने का नाम हिकमत है, छोटी बड़ी बातों पे रखना। और याद रखिए कि हिकमत इल्म से बड़ी चीज है, लिख ले, इल्म किताबों से मिलता है, फहम मिल जाता है, लेकिन हिकमत किताबों से नहीं मिलती। इल्म को इस्तेमाल करने का नाम हिकमत है, कहाँ, क्या, कुव्वत फैसला, अकल, फहम, राय, कहाँ क्या करूं, कैसे करूं। किसी को 10 रुपए देते हैं, वो जाके उसकी गंडेरियां खरीद लेता है, और किसी को आप 10 रुपए देते हैं, वो मस्जिद में 2 ईंटें लगाता है। कल कयामत के दिन पता चलेगा कि वो 10 रुपए की गंडेरियों से उसको फायदा हुआ जो उसने एक दो खाई बाकी शायद फेंकी थी, या उसको उन 10 रुपए की 2 ईंटों का फायदा हुआ जो कई साल तक उस मस्जिद में लगी रही। तो जिंदगी में सही फैसले करने हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दो लोग काबिले रश्क है, एक वो जिसको अल्लाह ने माल दिया और उस माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, और एक वो जिसको अल्लाह ने इल्म और हिकमत दिया और वो उसको अल्लाह के बंदों के साथ शेयर करता है। ये नहीं कहा कि वो काबिले रश्क है जो अच्छे कपड़े पहनता है, जो मार्क्स एंड स्पेंसर्स के स्वेटर्स पहनता है, वो नहीं है खुशकिस्मत, वो तो सारे ही हैं। इब्राहिम नखई एक मुफस्सिर है, कहते हैं हिकमत से मुराद कुरान की समझ है, हिकमत किसी को हराम कमाई से रोकती है। हदीस का खुलासा है कि रासुल हिकमती मखाफतुल्लाह, चाहते हैं ना हम सब हिकमत मिले, तो आपने फरमाया कि हिकमत का सर अल्लाह का खौफ है। कुछ लोग हैं दुनिया के माहिर, इतने कारोबारी, कोई बीट नहीं कर सकता उनको, लेकिन अल्लाह को नहीं मानते। कैसे मिले? दिल चाहता है ना हिकमत मिले। और मुझे ऐसे लगता है, मैं अक्सर ये जुमला बोलती हूँ अपनी क्लासेस में, मेरी नजर में दुनिया में जीने का ढंग सिर्फ उनको आ रहा है जो हिकमत के साथ जी रहे। आप किसी बंदे को खुश देखे ना, मुतमईन, पुरसकून, हर रिश्ते में, हर जगह कामयाब, जिस मैदान में उसको देखें आपको लगे वेरी गुड, एक्सीलेंट, ये हमें क्यों नहीं आया, तो आप समझ लें कि अल्लाह ने उसको हिकमत दी दी है। आती कहाँ से? नंबर एक, दुआ मांगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है कुरान में, रब्बी हबली हुक्मम वल हिकनी बिस्सालेहीन, इंशाल्लाह आप सीखेंगे फाइनी करीब में। अल्लाह मुझे हिकमत दे, अपने लिए मांगा करें, अल्लाह मुझे हिकमत दे। दूसरी चीज, अकलमंदों की सोहबत, ऐसे लोगों में उठे बैठा करें जो अकलमंद है। जैसे लोगों में बैठते हैं ना वैसी बातें करते हैं। हम अपनी कंपनी को बदलें, हर वक्त बैठ के फरलाटियां ही मार रहे हैं, फैशन की बातें। बस लोगों को देखा करे दोस्तों की महफिल में, ऐसे लगता है बगैर ब्रेक के गाड़ी बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पट 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 पट, टप 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 टप, बोल रहे हैं बोल रहे हैं, टप टप टप, कोई काबू ही नहीं है। छोड़ दें ऐसे लोगों की कंपनी को, खुद भी सीखे उनको भी सिखाएं, लेकिन अच्छे लोगों में बैठे। तीसरी चीज, तजुर्बात से फायदा उठाएं। जिंदगी में मुझे और आपको बहुत सारे तजुर्बे होते हैं, गेट बेनिफिट। हदीस में आता है कि मोमिन एक सुराख से दो बार नहीं डसा जाता। कभी कोई एक रास्ते से गुजरते हुए एक गड्ढा आया और आप गिरते हुए बचे या गिर गए तो दोबारा कभी वहां ना गुजरे। फिर तीसरी चीज, हिकमत आती है गौर व फिक्र से। आदत डालिए, जिसने गौर व फिक्र की आदत डाल ली, आप समझिए कि उसके लिए हिकमतों के दरवाजे खुल गए। फिर अगली चीज है अल्लाह का खौफ, अल्लाह से डरते रहे, तकवा। कोई मुझे नहीं देखता, अल्लाह देख रहा है। किसी को मेरे दिल का हाल नहीं पता, अल्लाह को पता। तो अल्लाह को गंदे दिल में बिठाएंगे, अल्लाह को गंदी सोच से रखेंगे। फिर अगली चीज है सच्ची जुबान। आज नियत करें, इस जुबान पे कुछ नहीं आएगा सच के सिवा। झूठी तारीफ नहीं करूंगी किसी की, झूठी मोहब्बत का इजहार नहीं करूंगी, झूठ नहीं बोलूंगी, सच बोलना है, सच सच। आप देखिएगा, कुल कौलन सदीदा, अल्लाह कहते सीधी बातें किया करो। फिर इसी तरह अपनी गलतियों से सीखना, और जितना ज्यादा आप अल्लाह से कुर्ब पैदा करेंगे उतनी हिकमत ज्यादा आएगी। सिर्फ दुनिया में जीने का हक जो है ना, वो हिकमत वालों का है। मुझे ऐसा लगता है जिंदगी एक बोझ है आज इंसानों के लिए, सिवाय उनके जो हिकमत से। उनको पता है शौहर बीवी का क्या ताल्लुक है, क्या हद है। उनको पता है सास बहू के रिश्ते की क्या हदें हैं। उनको पता है खाना क्या है, बोलना क्या है। और जो मन चले है ना, जो चाह खाया, जो चाह पहना। सर्दी है तो पतले कपड़े पहने इसलिए कि अच्छे लग रहे हैं। खाने पे आए तो खाते के खाते के खाते के आप समझ लीजिए कि उसको खैर नहीं मिल सकती। तो जिसको हिकमत मिलेगी, अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि वो बहुत बड़ी नेमत दे गया दिया गया। एक बैग आया आज मेरे पास, आप ही लोगों में से किसी का, मेरे नाम पे जब होता है तो फिर मैं उसको खोलती हूँ। इसमें एक पेपर है, मैं पढ़ के सुनाती हूँ आपको। और ये लिखती हैं कि साजा जी, मैंने एक स्पीच की थी जिसमें मैंने कहा था कि लंदन की ब्रांच के नूरुल कुरान के लिए कुछ करना चाहिए। ये कह तो दिया और इसके बाद मुझे चैन ही नहीं आ रहा था। तो यानी नमाज पढ़ते हुए भी मुझे यही ख्याल आता, कुरान पढ़ती तो भी यही ख्याल आता। किसी पल चैन ना आ रहा था कि मैंने सुना हुआ था कि नेकी करने में देर ना करो, क्योंकि ये जिस दिन बात है उसके बाद फिर 3 दिन की छुट्टियां थी, आपको पता है थर्सडे को ये बात हुई थी। ये कैसी नेकी उस्ताजा जी, अगर आप चाहें तो इस नेकी को जाहिर कर दें और अगर आप ना चाहें तो ना करें। एक नेकी ऐसी होती है जो छुपानी होती है और एक नेकी ऐसी है जो जाहिर करनी होती है कि लोग भी करें। ये कड़े मैं आपको दे रही हूँ जिसका सवाब मेरे माँ बाप को पहुँचे। मैं इनके लिए सदका जारिया बनना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे पैदा किया अल्लाह के हुक्म से, मैं इनके लिए बेहतरीन सदका जारिया बनूंगी। नेकी करने में जल्दी करनी चाहिए, देर ना करें। हर बहन को चाहिए कि वो सोचें और जल्दी करें। मैं खुद से लिख रही हूँ, मुझे किसी ने नहीं कहा, मेरे अल्लाह ने मेरे दिल में डाला है। मुझे सबसे प्यार सोने से था, ये कड़े मुझे बड़े पसंद हैं जो अल्लाह के नाम पर अपने माँ बाप के लिए अदा कर रही हूँ। अल्लाह ताला कबूल करे। मैं पढ़ी हुई नहीं हूँ, ख़ास तौर पे मुझे नहीं पता चलता कि क्या लिखूँ, यानी मुझे सही लिखना नहीं आ रहा। जाहिर करना या छुपाना, मेरे मियाँ कहते हैं कि एक नेकी है, इसको छुपाना चाहिए। एक नेकी वो है जिसको बता के करना चाहिए ताकि दूसरे भी करें। आपसे मशवरा करूं या आप खुद बेहतर समझती हैं, मेरे माँ बाप को सवाब पहुंचे, गलती माफ़ कर दें। और नाम भी लिखा इन्होंने अपना, और कहती हैं कि ये 7.5 तोले के कड़े हैं, ये कड़े हैं। अब आप देखिए कि ये कड़े हैं ना, आप देखिए ये दोनों एक दूसरे के बीच में भी डाल दें तो ये कड़ियाँ, ये हमारे दिल की कड़ी है वल्लाही। और ये जो जज्बे इनके हैं, इन्होंने जो लिखा है हम इसे बहुत ज्यादा समझ गए हैं ना। इसी तरह उस दिन, मैंने अभी पढ़ा नहीं है लेकिन मुझे खबर मिली कि जब उस दिन क्लास हुई थी तो उसके बाद में कुछ छुपा के अपनी चेन दे गया और ये कह रहे कि मुझे ना अपना नाम देना ना कुछ। हालांकि हम सबकी स्लिप देते हैं, ये सारी चीजें हैं जो हमारे सामने बहुत दफा पहले आई। क्लास सुनते हैं नॉर्वे के साथियों से इस वीकेंड पे बात हुई, उन्होंने भी इसी किस्म की ख्वाहिशात का इजहार किया। अब देखिए कि ये कोई नहीं कह सकता, कोई नहीं दे सकता ना ले सकता। मैंने जब उस दिन आपको पढ़ाया और मेरे दिल में ख्याल आया कि काम तो सब जगह नेकी का ही होता है ना, और जब हालात बनने होते हैं तो अल्लाह दिलों में डाल देता है बातें। जितनी मैं मुतमईन और मसरूर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तो लगता है कि जो हालात बनते जाते हैं अल्लाह वो काम कराता है। जिस जगह पे आप और मैं बैठ के इस वक्त पढ़ रहे हैं, हमारे तो वहमो गुमान में भी नहीं था, और शायद अल्लाह के ऊपर नजर ना लगाएं, अपने ऊपर देखें, तो शायद 10 साल तक भी हम कोशिश करते रहे तो हम ऐसी खूबसूरत जगह बना के नहीं पढ़ सकते। ये उस मालिक का फैसला था। याद रखिए, जिस तरह इंसानों का नसीब होता है ना, ऐसे ही जगहों का भी नसीब होता है। सिर्फ एक वक्त की बात होती है। जब नबी सल्लम मक्का से मदीना आए थे तो आपको पता है कि बड़े बड़े सरदार मौजूद थे उस वक्त मदीना में, साद बिन माज, असद बिन जुरारा, बड़े बड़े खाते पीते लोग थे। और लोग कहते थे कि अल्लाह के नबी हमारे मेहमान बने। और एक गरीब सहाबी था, बिल्कुल मुफलिस, अबू अय्यूब अल अंसारी, चुपके चुपके बीवी के साथ खुसर पुसर करते हैं। कहते हैं, मेरा दिल करता है कि अल्लाह के नबी मेरे मेहमान बने। तो बीवी कहती है, छोड़ो, लो इतने, गैर अल्लाह के नबी भी तो एक फाते ही थे ना, बड़े से मुराद दौलत वाले बड़े नहीं, ये ऐसे ही ना कि जैसे एक, अगर एक लीडर है तो दूसरे लीडर के घर में जाएगा, मेरे और आपके घर में तो नहीं आते ना सदर वजीर। तो ये चुपके चुपके बातें करें, लेकिन इन्होंने अंदर से दिल से तैयारियां की हुई थी। और इसी तरह हुआ, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आए तो सब अपने दरवाजे खोल के बैठे हुए थे कि किसी के घर को अल्लाह के नबी शर्फ बख्शे। और अल्लाह के नबी ने क्या कहा कि मेरी ऊँटनी अल्लाह की तरफ से मामूर है, ये जहां बैठेगी मैं वहां बैठूंगा। और आपको पता है कि आपकी ऊँटनी जाते जाते एक ऐसी जगह पे बैठी जो यतीम बच्चों की थी। अब सुनिए, ये जो हम कहते हैं ना पैसे वाले नेकियां करते हैं, ये झूठ है। पैसे वाले कभी नेकियां नहीं करते, दिल वाले यानी पैसे वाले सदका करते हैं या माल देते हैं, झूठ है। जितना पैसा बढ़ेगा दिल घुटेगा, लिख ले, कोलेस्ट्रोल है पैसा। जितना आपके पास बढ़ता है आप अपनी जात पे तो खुल के लगाएंगे, दीन पे नहीं लगाएंगे। और वही जकात ही बांट बूंट के बड़े खुश होते हैं कि हम बड़ों की मदद करते हैं। खैर, किस्सा मुख्तसर, घरों के दरवाजे खोले हुए थे और एक जगह आपकी ऊँटनी बैठी, उठी और चल पड़ी, आगे आ गई। पता किया तो वो जगह जो थी वो यतीम बच्चों की थी, बहरा सुहेल और सहल जो भी थे दो। अल्लाह के नबी ने कीमतन वो जगह उनसे ली और कहा कि यहाँ अल्लाह का घर बनेगा, यानी अपने घर से पहले अल्लाह के घर की फिक्र। फिर उसके बाद ऊँटनी वहां से चल पड़ी। फिर अब वो यूवन सारी का घर भी आया, लेकिन ऊँटनी नहीं रुकी और आगे चली गई। और अब वो यूवन सारी जो थे ना, उनकी जिसको आप अपनी जुबान में कि उम्मीदों पे ओस पड़ गई कि अब मेरी आस कहाँ पूरी होगी। लेकिन याद रखिए, उस मालिक की नजर दिलों पे है। ऊँटनी आगे गई और थोड़ा आगे जाके वापस आई और अब वो अय्यूब अंसारी के घर बैठ गए। और फिर अल्लाह के नबी वहां मेहमान बने, 6 महीने तक अब आ रहे थे। फिर उसके बाद जो हालात हुए, तो वो तड़प होती है, बेचैनियां होती हैं। तो मेरे दिल में आया कि बाज़ लोग, मुझे बहुत लगता है जब से भी नॉर्वे से लंदन का ये सफर शुरू हुआ है, हमें तो ये भी नहीं पता था कि दौरे कुरान कहाँ होगा, क्या होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी ये वीकडेज की जो जगह है, ज़रूरत है, ये जगह हमारी बहुत अच्छी तरह बुरी कर रही है, लेकिन कई चीज़ें लाइन पे लगी हुई है ना, आप सबके सामने ही है। आप स्टूडेंट्स को तो हम इतनी लिफ्ट नहीं कराते, सच्ची बात है, लेकिन आपके पास है। तो इंशाल्लाह, मैं अल्लाह पे नज़र डालते हुए आज से मेरे दिल था कि मैं आंटी जी की इस नेकी, जो हमारी वो बहन है हमारे नॉर्वे के साथ ही, आपके लिए तैयारियां करें। यानी मैं वाकई, मेरा दिल कर रहा है कि बगैर आप में से किसी से मशवरे के ये कहूँ कि इंशाल्लाह आप हमें यहाँ कभी एक प्रोजेक्ट लेना है। ये देखिए, ये ऑनलाइन पे हमारे पास ये एक पेज है। ऐसी मैंने आज जब बात कर रही थी तो मैंने बीच में देखा कि लोग वही होते हैं, जज्बे वही होते हैं, लेकिन चेहरे फर्क हैं। अगर आप नूरुल कुरान की वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ साइट पे आपको प्रोजेक्ट्स में ये दिखेगा लिगत। लिगत का मनी क्या है? वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगत। ए लोगो जो ईमान लाए हो, डर जाओ अल्लाह से, और चाहिए कि हर नफ्स सोचे कि उसने अपने कल के लिए क्या तैयार किया है। वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून। और जान लो कि अल्लाह उस पे जो तुम करते हो जान रहा है। दो दफा तकवा की बाढ़ है, ये देखिए, इधर भी तकवा है, इधर भी तकवा है, और बीच में लिखा द ली मैंने फॉर गद टुमारो, कल के लिए। ये प्रोजेक्ट हमारा तब बना था जब हमें नॉर्वे के लिए जगह की जरूरत पड़ी थी। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग प्रेजेंटेशन कई दफ़ा देख चुके हैं, मुझे सबने देखा हुआ है ना नॉर्वे का, किस तरह एक छोटे से कमरे से शुरू हुआ था और आज अल्लाह ताला ने वहाँ हमें बरकत दी है सब साथियों की। ये आंटी जी के कड़े आप लोगों के लिए नए होंगे लेकिन वल्लाही मेरे लिए नए नहीं है। मेरे अगर कंप्यूटर में कहीं स्क्रीन पे वो तस्वीरें हों तो आप हैरान रह जाएंगे कि जो उस वक्त हमारे स्टूडेंट्स ने डोनेट किया था, मेरा ख्याल है कि एक औरत आम हालात में नहीं कर सकती। अक्ल से पूछेगी तो नहीं करेगी, लेकिन वह मैं यू तल हिकमत फ़कद उतिया खैरन कसीरा। 25-25 तोले के सेट भी लोगों ने दिए। क्यों दिए? क्योंकि आज उनसे पूछिए तो उनकी आंखें कैसे ठंडी होती हैं। अभी मेरे पास रोज़ की रिपोर्ट आती है, एक एक क्लास की आती है माशाल्लाह। वहाँ इस वक्त 5-6-7 क्लासेस चल रही हैं, छोटी बड़ी बच्चों की जो भी है, लेकिन एक एक चीज़ का मेरे पास खबर आती है। तो मेरी नज़र में वही लोग होते हैं जिसमें किसी ने माँ का जेवर दिया तो किसी ने शादी का दिया तो किसी ने दिया। क्यों दिया? क्योंकि उनको यकीन है कि ये हमारे लिए है। और याद रखिए कि अगर हम कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं ना, ये प्रोजेक्ट है, तो फिर उसमें नज़र बाहर वालों पे नहीं होती हमारी। ये जो जगह का प्रोजेक्ट था आप ये जाके सुनिए, अगर बल्कि मैं आपको होमवर्क ही ना दे दूँ। ये देखिए ये छोटे छोटे लिंक हैं, ये अगर आप देखें लेगत प्रोजेक्ट अपडेट्स यादें, 1 साल जब हो गया था हमारी जगह को तो वो एक दिल की थी। तो ये स्टूडेंट्स की शेयरिंग है, आप सब साथी इस पूरे वीक में वीकेंड को मिला लें, अगले वीक में ये छोटे छोटे लिंक्स है सुनिएगा, पार्ट 1 और ये ऑडियो फाइल्स हैं, फिर ये इसके अंदर एक छोटी सी ऑडियो है, यानी जो कुछ है ये प्रेजेंटेशन आप खुद देख लीजिएगा। मुझे इस वक्त यहाँ इस पर इतना वक्त नहीं लगाना, आप देखेंगे कि वो जो सच्चे जज्बे क्या थे। अगर आप चाहते हैं कि आपका हम एक प्रोजेक्ट शुरू करें तो एक तो उसका नाम सोच क्या है और दूसरा ये है कि उसमें क्या करना है कैसे, यानी जो भी अब आपके दिल की बातें करें, लेकिन याद रखें कि कभी इस पे बाहर के लोगों से हम बात नहीं करेंगे। पूरा नॉर्वे का स्कूल बन गया था लेकिन हमने कहीं पब्लिकली जाके ये नहीं कहा था कि हमें चंदा चाहिए। आपको चाहिए ले लें, कोशिश करें, अपनी ज़ात से शुरू करें फिर दूसरों करें। और मैं आपको बताए बगैर, यानी मैंने तो ये आंटी जी ने अब दिया ना, मैंने अपने दिल में यहाँ की नीयत से अपनी कोई चीज़ वैसे ही किया हुआ काम, जब मौका आएगा आपको बताने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि उसमें भी मैंने इनको यही कहा था कि जिस दिन भी ये प्रोजेक्ट लिगत का शुरू होगा सबसे पहला फॉर्म मेरा जाएगा। हमने इसके फॉर्म बनाए हुए हैं और अगर आप चाहेंगे आप चूज़ करें, अपनी राय दें, कोई नाम सोचिए, फिर हम उसका फॉर्म बनाएंगे और आंटी जी को भी इसकी रसीद मिलेगी। और चाहे आप उसको फाड़ें जो मर्जी करें, लेकिन ये हमारा असूल है क्योंकि अल्लाह का हुक्म है। तो आप लोग इस पे जहाँ आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला फिर हम इसको लेकर चलेंगे।
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب